Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक छोटे बच्चे की तरह जो कि पूरी तरह से अज्ञानी है, अगर हम उनकी तरह जिंदगी जीना शुरू कर दें, जिंदगी को मजे से जिए, तो हम महसूस करेंगे कि हमें जो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिंदगी के, वो छोटे नजर आने लगेंगे। सही मायने जिंदगी का यही है कि खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक्स अ लॉट, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमने कुछ यूथ से बातचीत की, हमने जानने की कोशिश की कि उनके लिए लाइफस्टाइल की क्या मीनिंग है, और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह का लाइफस्टाइल वो पसंद करते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं।
जी
दोस्तों, एक गलत लाइफस्टाइल हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां और बीमारियां ला देता है। एक अच्छा लाइफस्टाइल हमारे और हेल्दी लाइफस्टाइल हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना देता है। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। आपके अनुसार लाइफस्टाइल क्या है और आपको किस तरह का लाइफस्टाइल पसंद है?
मेरे अनुसार लाइफस्टाइल का मीनिंग है कि हम अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हैं और किस तरह से जी रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि किस तरह से जी रहे हैं हम, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो आजकल जो लाइफस्टाइल्स है वो बहुत अनहेल्दी सा है लोगों का। वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों को क्या डिप्रेशन हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं, एकदम अपना लाइफस्टाइल सडनली वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हैंडल करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि हमें चाहिए कि हाँ भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम जस्ट वी विल फेस इट।
हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमें सबसे पहले तो एक फ्रीडम होनी चाहिए, प्लस हम उसमें हैप्पी रहें।
अकॉर्डिंग टू मी हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्टली, बिकॉज अगर पॉजिटिव हमारा लाइफस्टाइल होगा, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तभी हम कोई भी काम अपने लाइफ में, चाहे वो डेली रूटीन का हो या फिर कोई एक्स्ट्रा, तभी हम वो काम लाइक अच्छा कर सकते हैं।
मेरे लिए लाइफस्टाइल का मीनिंग है खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना।
खुश रहना और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना और गाने वगैरह सुनना और घूमना।
डॉक्टर साहब, यूथ, उनके पास में काफ़ी सारी ऊर्जा होती है जिसे अगर वो सही डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ाएं तो वो किसी भी तरह की उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हिंडर करती हैं, उन्हें रुकावटें पैदा करती हैं कि वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते, और वो समझ भी नहीं पाते कि ये सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम उनकी लाइफस्टाइल गलत होने का नतीजा है। और वो बड़ी बड़ी चेंजेस करने के लिए चाहते हैं, लेकिन छोटी सी चेंजेस जो कि लाइफस्टाइल में है उसके लिए वो हिचकिचाते हैं। आपके हिसाब से सही लाइफस्टाइल यूथ के लिए कौन सी होनी चाहिए?
जिस लाइफस्टाइल के साथ वो पूरे जीवन को चला सकें, जो उनके लिए सही है
जी,
यानी वो उन्हें खुशी देता है, सेहत देता है और उनके आसपास वाले लोगों को भी सशक्त बनाता है और काम करने के लिए उनको पूरी ऊर्जा प्रदान करता है
जी,
वही लाइफस्टाइल उनके लिए सही है और सस्टेनेबल है।
ओके।
कई बार यूथ में ये बात चलती है कि वो देखो वो तो 2 घंटे सोता है, वो सिर्फ जंक फूड खाता है, वो तो काम पे भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी चल रही है। शायद उसके सर्कमस्टांसेस अलग हों,
करेक्ट,
लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुश नहीं रहने वाला क्योंकि जब तक एक बैलेंस नहीं रहेगा आपके जीवन में अलग अलग चीज़ों का, तो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं दे सकता।
True.
और ना ही आपको किसी खास तरह की चीज़ अपने लिए या दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए देगा। अपने समय को सही रूप से चला पाना, उसमें एक बहुत और चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और वो है कि हम में से हर किसी की एक, जिसको हम बायोरिदम कहते हैं, वो होती है। यानी हमारा शरीर जो है और मन जो है वो कुछ खास समय पर ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है।
अच्छा।
और बाकी समय में थोड़ा सा शिथिल होता है और वो एक पेंडुलम की तरह सारा दिन में चलता है। तो अगर हम ये ध्यान रखें कि मैं किस समय में सबसे ज़्यादा जागरूक हूँ, किस समय में मेरी एनर्जी बेस्ट है, उस समय में जो इम्पोर्टेंट काम है हम वो करें।
ओके।
उस समय में और चीज़ों में समय ना व्यर्थ करें।
कई
बार हमारी कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए वेवर करती है, कम हो जाती है, तो उस समय मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ और उस ब्रेक में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करूँ। और उसके लिए बहुत आसान से तरीके हैं जो कि कुछ ही मिनटों में हम अभी डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल।
हम कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा सारा दिन हम खाते रहें।
अच्छा।
और वो जो खाएं वो आपको एनर्जी तो दे लेकिन फैट्स ना दे, जंक ना हो, जो कि पचाना ज़्यादा मुश्किल होता। उसमें फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, जूसेस हैं, उबली हुई चीज़ें हैं जो कि शुगर लेस हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और वो अक्रॉस द बोर्ड सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ व्यक्ति हैं, मान लीजिए वो काम जल्दी शुरू करते हैं, उस वजह से उनको थोड़ा जल्दी खाना पड़ता है। थोड़े हैं जो लेट शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा फ़र्क आगे पीछे हो सकता है, पर पूरे दिन के लिए अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्लस पानी खूब पिए। पानी हमारे शरीर का 80-85% हिस्सा है, तो अगर वो हम ज़्यादा रिप्लेस करते रहेंगे तो ऊर्जा चलती रहेगी। कोशिश करें कि वैसी चीज़ें जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोलास उनका सेवन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है या तली हुई बहुत ज़्यादा है, तो एक फिज़िकल लेवल पे भी वो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। उन लोगों से मिलें जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। कई लोगों का प्रोफेशन है जिसमें कि उनको ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो कि उनकी ऊर्जा को खाते हैं। मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि लोग आके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को ही बताते हैं। लेकिन कैसे मैं अपनी ऊर्जा को सारा दिन उस रूप में रख सकूं कि मैं धीरे 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 उसे कम भी ना होने दूं, और बीच में अगर थोड़ी सी कम भी हो तो उसमें बूस्टर डोज दे दूं। और ये अक्रॉस द बोर्ड देखा गया है कि कुछ परसेंटेज है लोगों की, और वो करीबन 10-90% है कि जब किसी चीज़ का वो सेवन करना शुरू कर लेते हैं तो वो उसके धीरे धीरे आदी होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, वो चीज़ उनको यूज़ कर रही होती है।
ओके।
और उसमें शरीर का भी रोल है, मन का भी रोल है, कि जब आप कोई चीज़ रोज़ लेते हैं तो शरीर उसका आदी हो जाता है।
बिल्कुल।
और उस वजह से आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और उसकी डैमेज भी आपके शरीर पर ज़्यादा हो रही होती है, प्लस जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको विड्रॉल्स होते हैं, और आप उन विड्रॉल्स से बचने की कोशिश करने के लिए फिर से उसको लेना शुरू करते हैं, तो एक साइकिल बनता जाता है। और उस साइकिल में आपके संबंध, आप अगर एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो आपके पास दूसरों के लिए समय नहीं है। खासतौर पर परिवार के लिए, कई बार बच्चों के लिए समय नहीं है, और वही जो समय है, एनर्जीज हैं, आप जब दूसरों को नहीं दे रहे हैं, अपने में ही खोए हुए हैं, या जब भी तनाव आया हाथ उसी ओर बढ़ गया, तो जब वो हो रहा होता है तो वो धीरे 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 आपकी एनर्जीज को, फाइनेंसेस को, रिश्तों को डिप्लीट करता रहता है। तो अगर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, शुरू में कई बार लोग समझते हैं कि इससे मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मेरा तनाव कम हो रहा है, इससे मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि मैं स्मार्ट दिखता हूँ या मैं अच्छी बातें करता हूँ, जो कि सच्चाई नहीं है। किसी भी एडिक्शन के बाद आप ना तो स्मार्टली बात करते ना आपके तनाव कम होते हैं, कुछ समय के लिए
पोस्टपोन हो जाते हैं, बस
पोस्टपोन हो जाते हैं और भ्रमित कर देते हैं।
करेक्ट।
तो अगर वो कहीं पे हो रहा है तो वो आपके लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर पाएगा, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बीमारियां हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक नहीं चल पाती। हम लाइफस्टाइल में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, वो है मैं। अगर मैं अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल मुझे खुशी नहीं दे सकता।
मतलब
मेरे लिए मैं कितना समय अपनी लाइफ में निकालता हूँ,
ओके,
कितने समय बैठ के मैं चिंतन करता हूँ, कितने समय बैठ के मेरा पर्पस क्या है इसके बारे में सोचता हूँ, कितना समय मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं परिवार के, काम के या काम से रिलेटेड, उसमें मैं कितना समय देता हूँ। बहुत से लोग ये बात करते रहते हैं कि मेरे काम से मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्ट कितना किया है, कितना समय सचमुच आपने काम के लिए सोचा है, पे पैकेज कैसा है, लोग कैसे हैं, स्टेटस है कि नहीं, ये सोचते रहते हैं, लेकिन उस काम में खुशी से मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसके बारे में अगर सोचना शुरू करेंगे तो कोई भी काम कर रहे हैं वो आपको खुशी दे सकता है।
करेक्ट।
और जब आपको खुशी होगी, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो काम करते हुए गुनगुनाते हैं। गुनगुनाना एक तरह से अपने अंदर की खुशी को जाहिर करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने काम से प्यार करते हैं।
करेक्ट।
और उसमें स्टेटस का, पैसे का फर्क नहीं पड़ता। आप झाड़ू लगाते हुए भी गुनगुना सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया गाड़ी में रह के, बहुत बड़े ऑफिस में सीईओ होने के बावजूद भी आप दुखी रह सकते हैं।
बिल्कुल।
तो काम आपको कितना मीनिंग देता है, प्लस जो एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं
जी।
अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को एक उम्र के साथ एसोसिएट कर दिया गया।
बिल्कुल। ये चीज आज थोड़ा बदलाव आता जा रहा है जितना मैं नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें यूथ, एज अ यूथ ही महसूस होता है। जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो डील कर रहे होते हैं, तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन को आजकल एक कॉमन डायलॉग हो गया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ एज अ यूथ। लेकिन किस तरह का मेडिटेशन करने से हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा ये वो नहीं जानते। कई लोग योगा को भी मेडिटेशन बोलते हैं, कई लोग ध्यान लगाना, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना, उसको भी मेडिटेशन कहते हैं। तो बेसिकली पता नहीं है कि विच इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। ये अगर उनको पता चल जाए तो आई थिंक उनकी जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी।
देखिए, योगा के अपने बेनिफिट्स हैं।
बिल्कुल।
से हठ योगा कहते हैं, आसनास जो है उनके शरीर के ऊपर अपने बेनिफिट्स हैं। उसी का एक हिस्सा है प्राणायाम, जिसका कि कई तरह के व्याधियों में, प्रॉब्लम्स में भी उसका हिस्सा है। लेकिन अगर वो कुछ थोड़ी देर के लिए ही है और वो लगातार नहीं है तो वो बात वहीं तक रुक जाती है। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसके ऊपर बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता, लेकिन मेरे जीवन के और प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे सकता।
करेक्ट।
मेडिटेशन कुछ समय के लिए हो सकती है और उसमें अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं। कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को देख के, जिसको तराटक बोलते हैं, खासतौर पे कैंडल के ऊपर कुछ लोग जैसे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग बार बार एक ही चीज़ को अपने मुंह में या मन में रिपीट करते हैं। लेकिन जब तक उसकी वजह से आपके सोचने के ढंग में बदलाव ना आए और उसकी वजह से आप लाइट ना महसूस करो या उसकी वजह से पीछे की चीज़ों को ना छोड़ पाओ या अपनी थिंकिंग को ना चेंज कर पाओ, तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी मदद नहीं करते। इंसिडेंटली, सही रूप से मेडिटेशन करने में सिर्फ आपकी अंदर की शक्तियां ही जागृत नहीं होती हैं, आप अध्यात्म की तरफ ही नहीं बढ़ते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, संबंधों में बदलाव, अच्छी नींद आना वगैरह वगैरह भी शामिल है। तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के रोज़मर्रा के रिश्तों को भी और काम को भी अच्छा कर सकें। प्लस एक बात कई बार उठ के आती है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं। और ख़ासतौर पे वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से सक्षम है, जिनके पास ज़िंदगी की बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अगर वो आगे बढ़ के दूसरों की मदद नहीं करते या समाज का सकारात्मक रूप से हिस्सा नहीं बनते, तो फिर कहीं ना कहीं जिस समाज को वो कोसते हैं कि समाज कैसा हो गया, आज की दिन में देखो क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन कम करने में भी सहायक नहीं।
करेक्ट।
तो वहाँ पे हमें हर समय ये देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या दे सकता हूँ। एंड इंसिडेंटली देने से चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, आपका अपने में ये कॉन्फिडेंस कि मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एक बच्चे को पढ़ाना हो, आप किसी एनजीओ का हिस्सा बन सकते हैं, आपका अपने घर में ही कोई व्यक्ति है
जी
जो उसको पढ़ा सकते हैं, और वो व्यक्ति हो सकता है, वो छोटा बच्चा हो सकता है, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, कोई और लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है, और कुछ नहीं तो अच्छे बोल तो बोल सकते हैं।
बिल्कुल,
वो भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हम समाज को दे सकते हैं। और बार बार सिर्फ एक ही चीज़ को रिपीट करने में कि क्या क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर मैं कहीं से शुरुआत करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी को देख के शायद किसी और की ज़िंदगी में भी बदलाव आए, और वो एक चेन रिएक्शन है जो कि हम समाज में ला सकते हैं।
दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये जो थॉट है कि मुझे देखकर और भी लोग परिवर्तन करेंगे, कई बार आजकल ये देखा जा रहा है यूथ्स के अंदर में कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या तो रोल मॉडल क्रिएट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी अच्छाइयों को बहुत जल्दी नहीं अपना पाते लेकिन उनकी बुराइयों के जल्दी से आदी हो जाते हैं। एक रोल मॉडल क्रिएट करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें 10 बार सोचना चाहिए, जो मेरी सोच है। आपकी क्या राय है?
देखिए, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं।
करेक्ट।
उसका जीवन में रोल अलग है। मैं उसकी अच्छाइयों को लेके अपने जीवन में ला सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं बन सकता हूँ।
True।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा नहीं है। अगर कोई मुझे एक्टर पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जिस तरह से वो एक्टिंग करता है वो उस फिल्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में और ख़ासतौर पर मैं अपनी प्रैक्टिस में वही एक्टिंग करनी शुरू कर दूँगा तो वो ठीक नहीं लगेगी। हाँ, अगर वो मेहनती है, अगर उसका लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा है, वो मैं अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। तो गुणों को लाना आसान है और गुणों को ही लाना चाहिए, बाकी जो किस तरह की वो पैंट्स पहनता है या हेयर स्टाइल है या मेकअप लगाता है या सिगरेट पीता है या नहीं पीता, वो शायद फिल्म में पीता है, ज़िंदगी में नहीं पीता।
Correct।
लेकिन उसे मैं अगर अपना लेता हूँ, या उसके रहने का जो ढंग है मैं सिर्फ उसके पीछे भागता रहूं, तो मैं एक फॉल्स लाइफ जी रहा हूं, मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूं।
करेक्ट।
अपनी ज़िंदगी में मेरा लाइफस्टाइल इंडिविजुअल होना चाहिए, मेरे लिए किस प्रकार से मेरी ज़िंदगी को और मेरे आसपास के लोगों को वो आगे ले के जाता है, वो ही मेरी सोच होनी चाहिए। और अगर वो सोच होगी तो मैं खुद एक ऐसा रोल मॉडल बन सकता हूँ जो कि दूसरे फॉलो करना चाहे।
ट्रू, बिल्कुल डॉक्टर साहब। साथ ही साथ इससे ही जुड़ा एक और सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि हम दिन की शुरुआत तो अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन का एंड होता है आधे दिन तक ही हम ड्रेन हो जाते हैं, एनर्जी लेवल जो डबल होनी चाहिए। एज अ यूथ तो आपने अभी अभी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि मेरी जो कैपेसिटी है उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी मेरे डैड की है, एज अ यंगस्टर मैं कहूँ। ऐसा क्यों है कि हमारे जो डैड्स हैं या हमारे जो पूर्वज हैं जो जिन उनकी एनर्जी हमसे ज़्यादा होती है, ये जो चीज़ मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि अभी अगर हमारा ये हाल है तो जब हम उनकी उम्र तक आएंगे तब तो हम शायद काम भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जी लेवल को कहाँ डिप्लीट कर रहे हैं हम अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू? तो अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए तो हम शायद उस लूप होल को भर दें और फिर हम भी एक रोल मॉडल कहलाएंगे।
देखिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचें।
ओके।
बहुत ज़्यादा क्या हो गया, क्यों हो गया, होना नहीं चाहिए था, इस बारे में ना सोचें। हम सिर्फ इस क्षण में जी सकते हैं।
करेक्ट।
जो पास्ट है वो निकल चुका है, फ्यूचर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये क्षण, अगला क्षण, अगला क्षण, अगला क्षण अच्छा गुजर रहा है तो मेरा फ्यूचर अपने आप ठीक होगा।
करेक्ट।
और फिर जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरा पास्ट भी ठीक होगा।
ट्रू।
सेकंड चीज, थोड़ा सा संतोष, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स एज दे आर। क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ये सोचते रहने के कारण अभी जो है उसे हम नहीं एंजॉय कर पाते।
True.
प्लस थोड़ा सा डिसिप्लिन, जो कि शुरू से लेके आखिर तक सारा दिन अगर बना रहे और रोज बना रहे। प्लस ये सोचना कि दुनिया से मुझे क्या मिल सकता है उसके बजाय मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। थोड़ा सा शिफ्ट इन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ और शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। प्लस अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब बाय एंड लार्ज अच्छे हैं और वो भी अपने आप जो जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मेरी जेलसीज हैं, जो मेरी हेट्रेड्स हैं, जो मेरे कंपैरिजंस हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो मेरी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं, ज़्यादातर एनर्जीज शरीर में नहीं वेस्ट होती।
अच्छा।
शरीर से अगर हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है।
ट्रू।
लेकिन मन की एनर्जी ऐसी है कि जो ड्रेन हो रही होती है वो हमें पता ही नहीं लगती। तो वो जो लीक है उसको अगर हम कहीं ना कहीं भरें, प्लस साथ ही साथ वो एनर्जीज जो हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती हैं, कई बार नेचर के साथ रहना, बच्चों को एंजॉय करना, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव आपको देते हैं।
करेक्ट।
कई बार जो रिश्ते पुराने बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे या हमें तंग कर रहे हैं उनको ठीक ठाक कर देना, कई बार दूसरों के लिए स्वतः ही कोई काम कर देना, कुछ भी दे सकते हैं, कम से कम शुभ भावना तो दे ही सकते हैं।
बिल्कुल।
तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ अगर हम थोड़ी थोड़ी भी अपनाते हैं तो ये हमें बढ़ा के रखती हैं एनर्जी लेवल में। और लोगों की जब हमको भावनाएं शुभ रूप से मिलती हैं तो वो भी हमें उड़ा के रखती हैं। तो अगर वो हम इकट्ठा करनी शुरू कर सकते हैं तो किसी भी एज में, स्पेशली यूथ में, हम एक लॉन्ग टर्म के लिए बीज बोते हैं जो कि जिंदगी में हमें आगे लेता जाता है।
वेरी नाइस डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है। कहीं ना कहीं हमने ये बातों को जानने की कोशिश की कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड गलतियाँ हो रही हैं जिसके वजह से हम एज अ यूथ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने ये भी जाना कि अगर हमारी खुद की वैल्यूज़ हमारे साथ हैं, अगर हम दूसरों के लिए भी अच्छा करेंगे और दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
ओम शांति।
दोस्तों, आज का ये एपिसोड कुछ इस प्रकार था। कहीं ना कहीं हमने ये जानने की कोशिश की कि एज अ यूथ कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी होती हैं। कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनती जाती है। अगर हमारी पॉजिटिव अप्रोच होगी ज़िंदगी को लेकर के और अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर आप नियमित कोई भी चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो राइट थिंकिंग ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी पहल की शुरुआत करते हैं जिससे आप अपनी लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।